नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सरकार ने बृहस्पतिवार को गेहूं आटे के दाम में तेजी पर लगाम लगाने के लिए इसके निर्यात पर अंकुश लगाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल के इस निर्णय से अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति होगी। इससे आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगेगा और समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं। दोनों देशों की वैश्विक गेहूं व्यापार में लगभग एक चौथाई हिस्सेदारी है। दोनों देशों के बीच युद्ध से गेहूं की आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। इससे भारतीय गेहूं की मांग बढ़ गई है। इसके कारण घरेलू बाजार में गेहूं के दाम में तेजी देखने को मिली है। सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मई में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि इससे गेहूं के आटे की विदेशी मांग में उछाल आया। भारत से गेहूं के आटे का निर्यात इस साल अप्रैल जुलाई में सालाना आधार पर 200% बढ़ा है। शेयर बाजारों में बृहस्पतिवार को गिरावट रही। कारोबार के अंतिम आधे घंटे में तेज बिकवाली से शुरुआती बढ़त जाती रही और बीएसई सेंसेक्स 311 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। वायदा एवं विकल्प खंड में मासिक सौदों के निपटान के अंतिम दिन आईटी और बैंक शेयरों में बिकवाली से बाजार नुकसान में रहा। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स कारोबार के दौरान लगभग पूरे समय लाभ में रहा, लेकिन अंतिम आधे घंटे में तेज बिकवाली से ये 0.53% की गिरावट के साथ 58,774.72 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये ऊंचे में 59,484.35 अंक तक गया और नीचे में 58,666.41 अंक तक आया। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.47% टूटकर 17,522.45 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, लार्सन एंड टुब्रो और एचडीएफसी प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। देश का चीनी निर्यात 2022-23 के सत्र में 28.57% घटकर करीब 80 लाख टन रहने का अनुमान है। इसका कारण पीछे कम बचा भंडार और एथेनॉल के लिए अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में गन्ने के उपयोग की संभावना है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये कहा। उन्होंने कहा कि हालांकि खुले सामान्य लाइसेंस के तहत निर्यात की अनुमति अथवा मौजूदा कोटा प्रणाली पर फैसला गन्ना पेराई कार्य शुरू होने पर कीमत की स्थिति का आकलन करने के बाद किया जाएगा। चीनी सत्र अक्टूबर से सितंबर तक होता है। गन्ना पेराई का काम आमतौर पर अक्टूबर नवम्बर में शुरू होता है और अप्रैल के मध्य तक चलता है। मौजूदा सत्र में चीनी निर्यात 1.12 करोड़ टन रहने का अनुमान है। अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा कि कुल मिलाकर चीनी उत्पादन अच्छा रहने का अनुमान है, लेकिन निर्यात अगले सत्र में कम होगा। उन्होंने कहा कि पिछली बची 60 लाख टन चीनी की उपलब्धता को देखते हुए अगले सत्र में आपूर्ति कम रहने की संभावना है। इसके अलावा एथेनॉल के लिए अधिक मात्रा में गन्ने के उपयोग की भी संभावना है। पिछले कुछ साल से आमतौर पर पिछले सत्र का चीनी भंडार 80 लाख से 1 करोड़ टन रहता था, लेकिन 2022-23 में इसके 60 लाख टन रहने का अनुमान है। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 2046 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को घटाकर शून्य करने का लक्ष्य तय किया है। कंपनी के चेयरमैन एसएम वैद्य ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के तेल शोधन और पेट्रोल रसायन कारोबार में कुल 2.15 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उन्होंने कहा कि कंपनी ऊर्जा दक्षता, विद्युतीकरण और ईंधन प्रतिस्थापन के जरिए रिफाइनरी और पेट्रोल रसायन कारोबार का संचालन को कार्बन मुक्त करने की योजना बना रही है। वैद्य ने कहा, आईओसी 2046 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करेगी, जब देश आज़ादी के 99 वर्ष का जश्न मनाएगा। वाहन कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने एन लाइन श्रृंखला के तहत अपने दूसरे संस्करण वेन्यू एन लाइन के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वह स्पोर्टी वाहन पसंद करने वाले ग्राहकों की मांग पर ध्यान दे रही है। कॉम्पैक्ट एसयूवी को स्पोर्टी स्टाइल देने के लिए इसकी बाहरी और आंतरिक साज सज्जा में बदलाव किए गए हैं। पिछले साल सितंबर में हुंडई ने देश में i20 एन लाइन पेश की थी। हुंडई मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ उन्स किम ने बयान में कहा कि हुंडई i20 एन लाइन को 2021 में बाजार में आने के बाद से ही मजबूत प्रतिक्रिया मिली है। अब हुंडई वेन्यू एनलाइन की शुरुआत के साथ हम भारतीय ग्राहकों के लिए एसयूवी चलाने के अनुभव को और बेहतर बनाएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम ने खुले बाजार में बिक्री के जरिए नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी 2% से अधिक घटाकर 8.33% कर दी। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को बताया कि नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज में उसकी हिस्सेदारी कंपनी की चुकता पूंजी के 10.56% से घटकर 8.33% रह गई। LIC ने कहा कि 30 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 की अवधि के दौरान 58.94 रुपए की औसत लागत पर होल्डिंग कंपनी में उसकी हिस्सेदारी में 2% की कमी आई है। उल्लेखनीय है कि सूचीबद्ध कंपनियों को हिस्सेदारी में 2% के बदलाव का खुलासा करना जरूरी होता है। नियामकीय सूचना के अनुसार 58.94 रुपए के औसत शेयर मूल्य पर हिस्सेदारी बिक्री का मूल्य 1.72 करोड़ रुपए बनता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।